हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वहीं आदित्य तुरंत दादाजी की ओर मुड़कर बोला, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर चल क्या रहा है, और मेरे सवालों का जवाब शायद आपकी वही झलक ही दे सकती है। मैं जा रहा हूँ उससे सवालों के जवाब मांगने। तब दादाजी बोले थे, अरे बेटा, हम तो यहाँ पर कबीर और अभय को ठीक होने की शुभकामनाएं देने आए थे। अब हम लोग भी निकल रहे हैं, हमारा काम हो गया है। और बलबीर, अपने सवाल संभाल कर रखना, वक्त आने पर तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये बोलकर उन्होंने अनामिका को वहां से चलने का इशारा किया। वहीं अनामिका एक बार फिर कबीर के पास गई, जिसके शरीर पर अब भी चोटों के निशान थे जहां झलक ने घूंसे बरसाए थे। उसने हल्के से कबीर के कंधे को छूकर कहा, अपना ध्यान रखिए कबीर जी, प्लीज जल्दी ठीक हो जाइए और एक बार फिर मेरी बहन से पिट लीजिए। ये बोलकर अनामिका जल्दी से वहां से निकल गई। अब तो सब लोगों को लगने लगा कि झलक का पूरा परिवार ही पागल है, जो इस तरह की अजीब और पागलपन भरी बातें कर रहा था। दूसरी ओर आदित्य उन दोनों को जाते हुए देखकर झल्ला कर सोचने लगा, आखिरकार हो क्या रहा है, लगता है मेरे सवालों का जवाब झलक ही देगी। ये सोचकर उसने कुछ ही मिनटों में अपनी गाड़ी कहीं और नहीं बल्कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के बाहर लगाई। अब उसका दिमाग और ज्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हो चुका था। वो सोचने लगा, जब से ये लड़की मेरी जिंदगी में आई है सब कुछ बदल गया है, मैं कुछ सोचने समझने की शक्ति ही खो चुका हूँ। आखिर है क्या ये मिस झलक मल्होत्रा, आज तो तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना ही होगा। गुस्से से दांत पींचते हुए वो तेजी से अंदर जाने लगा, लेकिन तभी वो एक बेहद हैंडसम लड़के से टकरा गया। किसी अनजान लड़के से टकराते ही वो सच में भड़क गया। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वो लड़का कन्फ्यूजन से आदित्य को देखते हुए बोला, आप मिस्टर आदित्य राणा है ना? ये सुनते ही आदित्य के माथे पर बल पड़ गए। वो सोचने लगा, ये कौन है जिसे मैं नहीं जानता लेकिन ये मुझे जानता है? वो तुरंत बोला, आखिर तुम हो कौन? मैं तुम्हें नहीं जानता तो तुम मुझे कैसे जानते हो? लड़के के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। मैं यहाँ उससे मिलने आया हूँ जो नीलामी में आपके साथ थी, वो लड़की झलक। मैं झलक से मिलने आया हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि मुझे वो कहाँ मिलेगी मिस्टर राणा? जैसे ही आदित्य ने ये सुना उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। कल सिद्धार्थ खुराना आया था और आज ये नया चेहरा, आखिर चल क्या रहा है? वो सख्त आवाज में बोला, पहले ये बताओ तुम कौन हो? तभी उस लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मेरा नाम आर्यन है, आर्यन रायचंद, मैं मुंबई से यहां झलक से मिलने आया हूं। ये सुनकर आदित्य की आंखें और चौड़ी हो गईं। आर्यन रायचंद यानी रायचंद इंडस्ट्रीज का मालिक। भले ही आदित्य सबको ना जानता हो लेकिन खास लोगों को जरूर पहचानता था। आर्यन आगे बोला, देखिए बहुत मुश्किल से मुझे आपकी इंडस्ट्री का पता चला है, मैं सिर्फ उससे मिलने आया हूँ, प्लीज मुझे बता दीजिए कि झलक कहाँ मिलेगी, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। अब तो आदित्य का दिमाग और ज्यादा घूम गया। कुछ पल के लिए उसने अपना सिर पकड़ लिया। झलक, उसके दादाजी, उसकी बहन, अब ये आर्यन, आखिर चल क्या रहा है? तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, मिस्टर राणा आप यहाँ? जैसे ही झलक की आवाज गूंजी आर्यन तुरंत पीछे मुड़ा। उसके सामने झलक खड़ी थी। ब्लैक कलर के सूट में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। झलक की नज़र जैसे ही आर्यन पर पड़ी उसके माथे पर हल्की सी लकीरें उभर आईं। वो थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि अचानक आर्यन झलक के सामने घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। ये दृश्य देखकर झलक हैरानी से भर गई। आर्यन रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो झलक, प्लीज, मैं जानता हूं कि मैंने दोस्ती के नाम पर कलंक लगाया है, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं बन पाया, प्लीज मुझे माफ कर दो। इस तरह की बातें सुनकर झलक खामोशी से उसकी ओर देखती रही। वहीं आदित्य अपना सिर पकड़कर खड़ा था। वो तो यहां अपने सवालों के जवाब लेने आया था लेकिन यहां तो सवाल और बढ़ते जा रहे थे। आर्यन रायचंद, इतना बड़ा बिजनेस टाइकून, झलक के सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांग रहा है, आखिर किस बात की माफी? लेकिन तभी झलक ने आर्यन को घूर कर देखा और ठंडे लेकिन सख्त लहजे में कहा, मिस्टर रायचंद, मुझे लगता है कि आपको वापस लौट जाना चाहिए और बेहतर यही होगा। वैसे भी आप अपने पिता को बिना बताए यहां चले आए, अगर उनको पता चला तो वो आपको आपकी ही कंपनी से निकालकर बाहर फेंक देंगे और आपका सब कुछ खत्म कर देंगे। ये बोलकर झलक मुड़ी और वापस जाने लगी। पीछे से आर्यन की तेज आवाज गूंजी, झलक प्लीज सुनो, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो और तुम्हारी नाराजगी जायज भी है, लेकिन अपनी दोस्ती के लिए मैं सब धन दौलत पर लात मार आया हूं, रायकिंद इंडस्ट्रीज को छोड़ आया हूं, मैं यहां सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनकर आया हूं। जैसे ही आर्यन ने ये कहा एक पल के लिए झलक रुक गई। उसने पलटकर उसे घूर कर देखा लेकिन आर्यन खुद को रोक नहीं पाया। वो आगे बढ़ा और सीधे झलक के गले लग गया। झलक ने पहले तो खुद को छुड़ाने की कोशिश की, फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, ठीक है, तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी बातों का बुरा लगा? नहीं लगा,
और वैसे भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं। तभी आर्यन ने अचानक मिस्टर राणा की ओर देखा और कहा, मिस्टर राणा, आई एम सॉरी कि मैं आपके सामने आपकी मंगेतर के गले लग गया। ये सुनकर झलक हैरान रह गई। उसने तुरंत आर्यन को पीछे खींचते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये मेरे मंगेतर नहीं है। ये सुनकर आर्यन सच में चौंक गया। लेकिन नीलामी में पूरे 5 करोड़ की बोली इन्होंने तुम्हारे लिए लगाई थी, अगर ये तुम्हारे मंगेतर नहीं है तो फिर कौन है, क्यों लगाई इन्होंने इतनी बड़ी बोली। जैसे ही आर्यन ने लगभग बेवकूफी भरे अंदाज में ये कहा, झलक ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ा और एक जोरदार मुक्का उसकी नाक पर दे मारा। आर्यन तुरंत नाक पकड़कर बोला, ये क्या, तुम्हारा पंच पहले से ज्यादा जोरदार हो गया है, क्या तुमने कोई ट्रेनिंग ली है। झलक ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधा अपने केबिन की ओर बढ़ गई। आर्यन तुरंत उसके पीछे पीछे चल पड़ा। तुम चाहो तो एक दो और मार सकती हो, लेकिन प्लीज मुझे मेरी पुरानी झलक लौटा दो, मेरी प्यारी दोस्त। मैं वादा करता हूँ अब कभी कोई गलती नहीं करूंगा, और अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो आज शाम मेरे साथ एक बियर पी लेना, बस एक बियर। अगर तुम मेरे साथ बियर पी लोगी तो मैं समझ जाऊंगा कि मुझे मेरी पुरानी दोस्त वापस मिल गई है, और फिर मैं यहां से चला जाऊंगा। झलक ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया और सीधे अपने केबिन में चली गई। आर्यन मायूस खड़ा रह गया, क्योंकि तभी कई सिक्योरिटी गार्ड वहां आकर खड़े हो गए। उधर आदित्य को अब तक समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहां हो क्या रहा है। उसने घूरकर आर्यन को देखा और फिर सीधे झलक के केबिन की ओर बढ़ गया। आर्यन बुदबुदाया, अगर ये आदित्य राणा झलक के मंगेतर नहीं है तो फिर है कौन, और उसके पंच को देखकर तो ये भी साफ है कि वो कोई साधारण लड़की नहीं है, आखिर चल क्या रहा है। तभी उसने पास खड़े बॉडीगार्ड से पूछा, एक बात बताओ, क्या मिस झलक और आदित्य राणा की शादी हो गई है। बॉडीगार्ड ने साफ कहा, मैडम की शादी नहीं हुई है और ये पूरी कंपनी मैडम की है। जैसे ही बॉडीगार्ड ने ये कहा, आर्यन जोर से हंस पड़ा। ओ, तो लगता है यहां सभी लोग मुझे कंपनी का मतलब गलत समझा रहे थे। जरूरी नहीं कि कंपनी का मालिक वही हो जो बाहर से दिखता है, शायद झलक यहां काम करती होगी और उसकी ईमानदारी देखकर मिस्टर आदित्य राणा नीलामी में उसकी मदद करने आए होंगे। उसने अपने दिमाग में खुद ही कहानी बना ली, जो उसे ठीक लगा वही सच मान लिया। उधर आदित्य राणा उसे इस तरह देख रहा था मानो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ आर्यन रायचंद है। आदित्य सीधे झलक के केबिन में घुसा, टेबल पर झुककर उसने जोर से हाथ मारा और गुस्से में बोला,
ये चल क्या रहा है मिस मल्होत्रा, कितने रूप हैं आपके, आखिर आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं। आई वॉन्ट आंसर राइट नाउ, मुझे अभी और इसी वक्त मेरे सवालों के जवाब चाहिए। झलक उसकी बातें सुन रही थी लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने अपनी आंखें और सख्त कर ली और धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, राणा साहब, मैं आपकी जागीर नहीं हूं, जो मेरी जिंदगी है वो आपकी आंखों के सामने है। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मुझे हर सच और हर झूठ कबूल है, लेकिन अपने किरदार पर किसी तरह की बदतमीजी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो आगे बोली, आपके भाई और आपके दोस्त को भी मैंने सिर्फ इसीलिए मारा क्योंकि उन्होंने मेरे बारे में गलत बोला, उन्होंने मेरे चरित्र पर उंगली उठाई, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। और वैसे भी मैं जो भी हूं, मैं आपकी आंखों के सामने खड़ी हूं, आपको मेरे बारे में क्या राय रखनी है वो आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे बचाने की कोशिश मत कीजिए, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। झलक की बातें सुनकर आदित्य को एक के बाद एक झटके लग रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है और झूठ क्या, लेकिन इतना साफ था, झलक अब वो लड़की नहीं रही थी जिसे वो समझता था।